अब आगे बढ़ते हैं, अगले उस पर आते हैं. सर्कमस्टेंस डज नॉट मेक द मैन, इट रिवील्स हिम टू हिमसेल्फ. मतलब हमारी लाइफ में जो भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर जाकर के ऐसा लगता है कि मैं तो फंस गया हूं पूरी तरह से, अब शायद मैं यहां से कभी बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा. होता है ना ऐसा, एक ही सिचुएशन में दो लोग जाते हैं, एक पूरी तरह से फंस जाता है, अंदर से टूट जाता है और दोबारा से कभी खड़ा नहीं हो पाता है, और पूरी जिंदगी बस वही राग अलापता रहता है कि मेरे साथ में वो जो हुआ उसकी वजह से आज मेरी हालत है, वो ना हुआ होता तो पता नहीं आज मेरी लाइफ कितनी बढ़िया होती. दूसरी तरफ से एक और आदमी है जो उसी सिचुएशन में गया या उससे भी बुरी सिचुएशन में गया, लेकिन जब वो सिचुएशन से बाहर आया कुछ दिन बाद या कुछ हफ्ते बाद या कुछ महीने बाद, वो उससे लाख गुना बेटर बनकर के बाहर आया जैसा वो पहले से था. तो ये क्या हुआ, क्या फर्क था दोनों में? उस प्रॉब्लम की वजह से उस आदमी की लाइफ खराब नहीं हुई है, अंदर से जो वो था वो ही निकल करके आ गया. अंदर से वीक था तो वो वीकनेस उस सिचुएशन के आगे हल्की पड़ गई और वो अंदर से टूट गया, लेकिन अगर वो अंदर से स्ट्रांग था तो उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ गई उस प्रॉब्लम की वजह से और वो और स्ट्रांग बनकर के बाहर निकल करके आया. सर्कमस्टेंस डज नॉट मेक द मैन, इट रिवील्स हिम टू हिमसेल्फ. मतलब आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बहुत बड़ा चैलेंज आता है या कोई मुश्किल आती है, तो वो आपका कुछ नहीं कर सकती है, वो आपको सिर्फ ये दिखा रही है कि आप एक्चुअल में अंदर से क्या हो. मतलब करना क्या है, जब टाइम अच्छा चल रहा हो लाइफ में तो अच्छे थॉट्स को अपने अंदर प्लांट करना है. ध्यान से समझना ये बात, अच्छे थॉट्स को अपने अंदर प्लांट कब करना है, जब लाइफ अच्छी चल रही है, ना कि बुरी चल रही है. क्योंकि जिस वक्त आपकी लाइफ बुरी चल रही है उस वक्त तो आप इस सिचुएशन में नहीं हो कि आप समझ सको, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है. उस वक्त तो फैसले का वक्त होता है कि प्रॉब्लम आ गई है, अब यहीं के यहीं फैसला होगा, या तो प्रॉब्लम तुझे तोड़ेगी या तू प्रॉब्लम को तोड़ेगा. कोई लड़ाई है बहुत बड़ी तो उस वक्त अपने आप को तैयार नहीं किया जाता, जिस वक्त आपको लड़ना है उससे कई साल पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, तब जाकर के उस प्रॉब्लम में आप लड़ पाते हो. आगे बढ़ते हैं. मेन डू नॉट अट्रैक्ट दैट विच दे वॉन्ट बट दैट विच दे आर. लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लोग बात तो करते हैं लेकिन बहुत ही कम लोग उसको डीपली समझ पाते हैं. हम वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं अपनी लाइफ में जो हम चाहते हैं. चाहता तो हर आदमी बहुत कुछ है, और नहीं चाहता है, किसी से भी जाकर के पूछ लो, भैया आप क्या क्या चाहते हो, मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं, वो चाहता हूं. हर आदमी चाहता है कि उसको सब कुछ मिल जाए, लेकिन उसको वो नहीं मिलता है जो वो चाहता है, उसको वो मिलता है जो वो होता है. बहुत जरूरी है इसको समझना. कोई बंदा है, मान लो बैट्समैन है, क्रिकेट की बात करते हैं, उसने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है अपनी बैटिंग के ऊपर, तो उसको क्या मिलेगा जब एक्चुअल मैच होगा, तो उसको क्या मिलेगा? अगर अंदर से वो तगड़ा बैट्समैन है, उसने प्रैक्टिस कर रखी है, तो आज नहीं तो कल उसको रिजल्ट मिलेगा, यानी सेंचुरी मिलेगी. दूसरी तरफ से एक बंदा है, वो चाहता बहुत कुछ है लेकिन अंदर से वो बेकार है, तो उसको क्या मिलेगा? मान लो उसकी अप्रोच भी है, उसके कनेक्शंस भी हैं, तो क्या उसको सक्सेस मिल जाएगी लॉन्ग टर्म में? गलती से अगर अंदर चला भी गया तो एक मैच, दो मैच, तीन मैच, उसके बाद में बाहर आ जाएगा. तो किसको क्या मिला, वो नहीं जो उसने चाहा, वो जो वो है. है का मतलब क्या, अंदर से कितना दम है. तो लाइफ जब आपके आगे चैलेंजेस थ्रो करेगी तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहोगे, क्योंकि उस वक्त हर कोई क्या चाहेगा कि जल्दी से ये जो प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाए मेरी लाइफ में, ये सिचुएशन बदल जाए, मेरी जो हेल्थ है ना, मान लो हेल्थ के लेवल पे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो हर बंदा क्या चाहेगा उस वक्त कि मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम चली जाए और मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं. लेकिन जो चाहता है वो नहीं मिलेगा उसको, उसको वो मिलेगा जो वो अंदर से है. यानी अगर कभी उसने अपनी थिंकिंग पे काम ही नहीं किया है, और ये जो माइंड है जिसकी गार्डन की अभी हमने बात करी, वो ऐसा गार्डन है जहां पर कांटे वाली घास है, तो वो और डर जाएगा. जैसी कोई बीमारी आएगी वो और डर जाएगा, जितना डरेगा बीमारी और बढ़ जाएगी, जितनी बढ़ जाएगी और उसके साथ में बीमारियां जुड़ जाएंगी, जितनी जुड़ जाएंगी वो और डरेगा, तो ये साइकिल बन जाएगी, तो वो नीचे गिरता चला जाएगा. दूसरी तरफ से अगर उसने अपने माइंड पे काम किया होगा तो बड़ी से भी बड़ी बीमारी आ गई वो वहां से बाहर आ जाएगा, वो हिम्मत नहीं हारेगा, उसको पता होगा दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, वो फेस करेगा उसको. तो उसको क्या मिला, किसको क्या मिला? एक तरफ से एक बंदा टूट गया बीमारी की वजह से, एक तरफ से दूसरा बंदा उस बीमारी से बाहर आ गया, मान लो एक महीने बाद, दो महीने बाद, तीन महीने बाद. एक तरफ से एक बंदा है जिसकी बीमारी और बढ़ गई, शुरुआत हुई थी एक छोटी सी बीमारी से लेकिन अल्टीमेटली बढ़ती चली गई. दूसरी तरफ से एक बंदा है जिसकी शुरुआत हुई थी एक बड़ी बीमारी से लेकिन धीरे धीरे वो बीमारी जड़ से खत्म हो गई. फर्क क्या है दोनों में? थिंकिंग का फर्क है, और क्या फर्क है? आगे बढ़ते हैं. नॉट वॉट ही विशेज एंड प्रेज फॉर डज अ मैन गेट, बट वॉट ही जस्टली अर्न्स. हिज विशेज एंड प्रेयर्स आर ओनली ग्रेटिफाइड एंड आंसर्ड व्हेन दे हार्मोनाइज विद हिज थॉट्स एंड एक्शंस. वही बात है जो अभी हमने करी है कि विश करने से, प्रे करने से कुछ नहीं होता है, कमाना पड़ता है. जैसे बाहर की दुनिया में कमाना पड़ता है ना, ऐसे ही अंदर की दुनिया में कमाना पड़ता है. खुशी चाहिए जिंदगी में तो वो कोई छोटी चीज नहीं है, कमाना पड़ेगा. खुशी ऐसे ही नहीं मिल जाती है, पीस ऑफ माइंड ऐसे ही नहीं मिल जाता है जी, कमाना पड़ता है. उसके लिए पता नहीं कितना काम करना पड़ता है, अंदर एक ऑर्डर होना चाहिए. ज्यादातर लोगों की जो थिंकिंग है वहां पर अगर झांक करके हम अंदर देखेंगे तो डिसऑर्डर है. अजीब अजीब से थॉट्स आ रहे होते हैं जिनका आपस में एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं होता है. बिल्कुल ऐसे ही जैसे गार्डन है जहां पर कुछ भी उग रहा है, चाहे वो चाहते हैं चाहे नहीं चाहते, कहीं भी कुछ भी उग रहा है. एक है गार्डन जहां पर एक एक चीज को बड़े अच्छे से प्लांट किया गया है. तो थिंकिंग में ऑर्डर कैसे आता है, थिंकिंग एक फ्लो में कैसे जाती है, थिंकिंग कंट्रोल कैसे होती है, थिंकिंग डायरेक्शनल कैसे होती है, इसी को तो सुख बोलते हैं. आगे बढ़ते हैं. मेन आर एंशियस टू इंप्रूव देयर सर्कमस्टांसेस बट दे आर अनविलिंग टू इंप्रूव देमसेल्व्स, दे देयरफॉर रिमेन बाउंड. फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी है उसको हेल्थ चाहिए लेकिन वो टेस्ट के पीछे पागल है, अपने टेस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता है और ओवर ईटिंग करता रहता है सुबह से रात तक, तो क्या वो डिजर्व करता है हेल्थ को? ही डू नॉट डिजर्व हेल्थ. मतलब सारा गंद खा रहा है, कचरा खा रहा है और एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि मेरी हेल्थ ठीक रहेगी, रह ही नहीं सकती. तो उसको करना क्या है, अपनी हेल्थ को ठीक नहीं करना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है कि डॉक्टर मेरे को ये बीमारियां हो गई है अब इसको ठीक करो गोलियां दे करके, क्योंकि उन गोलियों के भी साइड इफेक्ट्स होंगे. उसको करना क्या है, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना है, यानी खुद को बदलना है. अगर उसने खुद को बदल लिया तो हेल्थ अपने आप ही मिल जाएगी. आगे बढ़ते हैं. सफरिंग इज ऑलवेज द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग थॉट इन सम डायरेक्शन. मतलब जब भी हमें दुख हो रहा है, हम दुखी हैं, परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, उसकी जो जड़ है वो है कि कोई ना कोई ऐसा हमारा थॉट है जो गलत है और गलत डायरेक्शन में जा रहा है. तो रुक करके अपने आप से इमीडिएटली पूछना है कि मैं ऐसा क्या सोच रहा हूं, क्या चल रहा है अंदर, लेट मी सी, लेट मी फाइंड आउट. वही जवाब मिलेगा. अगर मूड खराब है या आपको बुरा लग रहा है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसे एस्केप करते हैं, अपना ध्यान वहां से हटाएंगे, मोबाइल को ऑन करके उसमें इंडल्ज हो जाएंगे, अपने ध्यान को वहां से हटाने की कोशिश करेंगे. जबकि ये नहीं करना है, क्योंकि सफरिंग वहीं की वहीं है, दुख वहीं की वहीं पड़ा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल एक जख्म है, उसके ऊपर हमने कोई कपड़ा डाल दिया तो हमें क्या लग रहा है, जख्म ठीक हो गया है. जख्म ठीक नहीं हुआ है, वो तो और बिगड़ता चला जा रहा है. तो करना क्या है, उस जख्म को देखना है और इमीजिएटली उसको ठीक करना है ताकि वो और बड़ा ना हो. तो जब भी हमारी लाइफ में सफरिंग आ रही है, यानी दुख आ रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, तो अपने अंदर झांक करके देखना है और अपने आप से सवाल पूछना है. और जब हम सवाल पूछते हैं तो जवाब मिलता है. अपने आप से सवाल पूछना है कि मैं ऐसा क्या सोच रहा हूं जो कि गलत डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से मैं ऐसा फील कर रहा हूं, और क्या उसकी डायरेक्शन को ठीक किया जा सकता है. डेफिनेटली किया जा सकता है, थॉट ही तो है. थॉट किसके हाथ में है, पूरी तरह से आपके हाथ में है. क्यों? क्योंकि थॉट को क्रिएट कौन कर रहा है, हम ही तो कर रहे हैं. होता क्या है कि जब भी हम दुखी होते हैं किसी भी थॉट की वजह से, वो उस एक थॉट तक नहीं रहता है, उसके साथ में और भी थॉट जुड़ने लग जाते हैं. फिर हम हर बात पे, जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइटी हो रही है, अंदर से डर लग रहा है किसी चीज को लेकर, फिर छोटी छोटी चीजों में भी डर लगने लग जाता है. ऐसी ऐसी चीजें जो आप बिना किसी डर के करते थे वो करने के नाम से भी डर लगता है, अरे ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा. तो डर बढ़ता चला जाता है. मतलब माइंड का एक सीधा सा फंडा है, वॉट एवर योर माइंड फोकसेस ऑन स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग, वो एक्सपैंड होने लग जाता है. तो अगर उसको वहीं नहीं रोका गया तो वो एक्सपैंड होता चला जाएगा. दुख को वहीं नहीं रोका गया तो वो एक्सपैंड होता चला जाएगा. और दुख से भागने से दुख खत्म नहीं होता है, दुख की जड़ तक जाने से दुख खत्म होता है. और जड़ तक जाने का मतलब क्या, क्वेश्चन करो कि मैं दुखी क्यों हो रहा हूं, मेरे दुख की जड़ क्या है. वहां से कुछ भी आंसर निकल करके आएगा कि अच्छा वो इंसान है मेरे दुख की जड़, बट उसने ऐसा क्या कर दिया है, उसने कुछ ऐसा बोल दिया है कि मेरी ईगो को चोट लगी है. तो अगर कोई आपकी ईगो को चोट पहुंचा रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं, ईगो को, दोनों में डिफरेंस है. ईगो मतलब मैं ये, मैं वो, मैं वो, मैं वो, मैं वो, मैं अकेला ही समझदार हूं, बाकी पूरी दुनिया बेवकूफ है. तो कोई बंदा आया, उसने आकर के आपके मुंह पे बोल दिया, कह रहे नहीं तू इतना भी समझदार नहीं है, बेवकूफ है, तो ये सच है, क्योंकि हर कोई समझदार भी होता है बेवकूफ भी होता है, तो उसने तो सच बोला है, तो मैं दुखी क्यों हो रहा हूं, वो तो मेरा दोस्त है, बल्कि और जितने भी लोग हैं वो मेरे दोस्त बनते हैं लेकिन है नहीं, क्योंकि मुंह पे मेरी तारीफ करते पीछे से मजाक उड़ाते हैं। अकेला ये बंदा है जिसमें दम है मेरे मुंह पे बोलने का कि तू बेवकूफ है, तो मैं परेशान क्यों हो रहा हूं, क्यों ना मैं उसकी बात को समझूं, और हो सकता है उसकी बात में दम हो तो उस बात पे एक्ट करूं और काम को खत्म करूं। तो माइंड क्लियर हो गया।